الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا أنفسكم ولا على أولادكم ولا أموالكم لا يوافق ساعة فتستجاب صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگو بھائیو دوستو پچھلی جمعہ کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں موضوع مکمل کروں گا اور بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ کی صفت ہے. الرحمن سے مراد بڑی نعمتیں اللہ بندوں کو دیتا ہے, بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیتا ہے, اور الرحیم کے معنی ہے اللہ چھوٹی نعمت بھی بندوں کو دیتا ہے. اگر صرف الرحمن کہتا تو بندہ یہ خیال کرتا کہ چھوٹی تو دنیا سے ہی مانگ لیا جائے, دنیا والوں سے, لیکن اس بات کو بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو چھوٹی سے چھوٹی نعمت. صحیح حدیث ترمذی شریف کی کہ اگر تمہارا جوتا ٹوٹ جائے یا جوتے کی رسی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو, نمک گھر میں ختم ہو جائے سالٹ تو بھی اللہ سے مانگو. تو یہاں بڑی نعمت سے مراد ایمان ہے کہ اللہ سب سے بڑی نعمت انسان کو دیتا ہے ایمان, یہ سب سے بڑی نعمت. اور ایمان کے بعد پوری زندگی ہدایت پر چلانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس سے بھی بڑی نعمت اللہ تعالی نے ہم سب کو آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, یہ بڑی نعمت. نعمتیں بے شمار ہیں. یہاں تک کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی بات میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اگر دنیا میں لوگ اربوں نہیں خربوں لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, اللہ کی رات دین نافرمانی کرتے ہیں, پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو مہلت دیتا ہے. حضرت فرماتے علامہ شبیر احمد عثمانی, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. ورنہ قرآن کریم میں ہے, اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے نافرمانی کی وجہ سے میں پکڑ پر آ جاتا تو دنیا میں کوئی باقی نہ رہتا, تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر میں تمہاری پکڑ کر لیتا تو دنیا میں کوئی باقی نہ رہتا, سب کو ختم کر لیتا. اور اس پر آخری بات آدھی رہ گئی تھی, وہ ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ڈیبیٹ ہوا بہت سی مرتبہ دیانند سرسوتی کے ساتھ. یہ بہت بڑا ہندو مہاراج تھا دیانند سرسوتی. یہ ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا. کس کے پاس؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس. اور آنے کے بعد کہا, حضرت ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں دنیا والوں پر بے شمار ہے, لیکن آپ کے قرآن میں اللہ نے سورۃ الرحمن کو اتاری ہے. کون سی سورۃ اتاری بھائی؟ میرا ساتھ دو گے نا, کون سی سورۃ؟ اس میں اللہ نے ہر جگہ نعمت کو بیان کیا, اور نعمت کو بیان کرنے کے بعد ایوری ٹو آیتس فبئی آلی ربکما تکذبان, تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. بار بار ریمائنڈ. پھر آگے چل کر دیانند سرسوتی کہتا ہے, اسی سورۃ الرحمن میں ہے, یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان ہذہ جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء. یہ کون سی نعمت آ گئی؟ جہنم میں تمہارے سر کے بال پکڑ کر کے ڈالا جائے گا, تمہیں کھینچا جائے گا, تمہیں عذاب کیا جائے گا, تو کیا آگ میں ڈالنا بھی نعمت ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں محمد, یہ تمہارا گھڑا ہوا قرآن ہے. یہ کون کہنے لگا؟ دیانند سرسوتی. کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے. جواب بھی عجیب دیا حضرت نے, اور جواب دینے میں بڑے ماہر تھے. ایک مرتبہ حضرت کے پاس ایک آدمی آیا, حضرت فلاں ہندو ہے, وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن اس کا ایک سوال ہے, میں جواب نہیں دے سکتا, میں جاہل ہوں, آپ ہی جواب دے دیجئے. وہ مجھے پوچھ رہا ہے مسلمان تو بنوں گا, بٹ دیر از مائی ون کوشچن, یو ہیو ٹو آنسر می, اللہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے؟ مجھے کیا پتا اللہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. دیر از اللہ مسلم اور ناٹ, ہاؤ آئی نو؟ حضرت نے فرمایا اس کو لے کر آ میرے پاس, جاؤ اس کو لیا. بہت عجیب جواب دیتے تھے. جب اس کو لایا گیا, لانے کے بعد کہا, بھائی تیرا کیا سوال ہے؟ اللہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ہاں میرا سوال ہے, اگر آپ جواب دے دیں میرے دل میں بیٹھ جائے ابھی مسلمان بنتا ہوں. حضرت نے فرمایا ہاں اللہ مسلمان ہے. دلیل تم دیکھنے گئے تھے؟ فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں پہلی سورت سورۃ البقرہ اتاری, اور اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ تم ان کو بتاؤ کہ ایک گائے بچڑے کو ذبح کرو. معلوم ہوتا ہے گائے کو ذبح کرنے والا مسلمان ہے, ہندو گائے ذبح نہیں کرتا. ہندو گائے, انڈیا میں دیکھو نا کتنے مسئلے ہیں گائے ذبح کرنے کے, تو مسلمان اللہ ہے اسی لیے وہ کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو, وہ مسلمان ہے. اور میں مسلمان بن گیا, میں اسلام قبول کر لیا. حالانکہ یہ کوئی جواب نہیں تھا, لیکن اس کے دماغ میں ایسی بات بٹھا دی. سبحان اللہ, حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ڈیبیٹ بھی عجیب. اسی لیے مولانا علی بھی ایسا فرماتے ہیں, آؤ مسلمانوں, شریعت محمدی سمجھنا ہو تو علماء دیوبند سے سمجھو.
और उस पर मैंने लास्ट वीक बात सुनाई थी, याद अगर आपको आ जाए तो, कौन सी?
कि हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र में, आखिरी उम्र है, बहुत बीमार थे, चल नहीं सकते थे, तबीयत और बदन मोटा हो गया था। अब रमजान आ गई, जिंदगी पर एहतिकाफ में बैठे, हजारों लाखों का मजमा आपकी खानकाह में आ रहा है। अब हजरत अगर नहीं बैठेंगे तो क्या होगा? बड़े लोग उलमाए किराम ने उनको कहा, हजरत आप तशरीफ लाए, आप बैठिए मस्जिद में एहतिकाफ में, तो लोग आएंगे, लोगों को फायदा होगा। हजरत ने कहा मैं बैठ नहीं सकता, मुझे बड़ी तकलीफ है। फरमा हजरत हम आपके लिए मैट्रेस डाल देंगे, बेड डाल देंगे, बड़ा बेड होता है ना, बड़ा बेड होता है ना, वो डाल देंगे आपके लिए। फरमाया मेरा मुफ्ती आ जावे ना, मेरा मुफ्ती आ जावे, उसको मसला पूछ कर फिर मैं जवाब दूंगा। अब कौन सा मुफ्ती थे वो? मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह, हालांकि वो हजरत से बैठे, मुफ्ती महमूद हसन साहब हजरत के खुलफा में से। और 18वें रोजे को हजरत तशरीफ लाए, कहा मुफ्ती साहब ये लोग मुझे कह रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि आप तशरीफ लाए, हम आपके लिए बेद रख देंगे। याद है बात मेरी कि भूल गए?
याद
है ना। तो हजरत ने कहा, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, मुफ्ती महमूद साहब ने देखो अक्ल देखो, फरमाया हजरत जायज नहीं है। क्या फरमाया? आपके लिए मैट्रेस को मस्जिद में लाना जायज नहीं है। हालांकि मौलाना जकरिया साहब इतने बड़े आलिम है कि हदीस की बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, कि अरब लोग भी हैरान है ऐसी किताब, लेकिन का मेरा मुफ्ती आएगा जवाब देगा तो मैं करूंगा, हाँ कहे तो ठीक है, ना कहे तो ना, कह दिया हजरत ये जायज नहीं है। फरमाया मेरे मुफ्ती ने कहा ना, अब मैं नहीं कर सकता। सब लोग बैठे रहे, हजरत सिर्फ बयान करते थे, फिर घर तशरीफ ले जाते थे। अजीब आलम, जब मजमा इधर उधर चला गया, हजरत मुफ्ती साहब से पूछा, भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ देर के लिए तो कुर्सी भी लाई गई और फुना भी किया गया, ये तो जायज होना चाहिए मजबूरी में। फरमाया हां हजरत, अगर मैं मजमे के सामने यूं कहता जायज है, सहाबे किराम तो समझदार थे, उनको तो पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है इसलिए, लेकिन आजकल आपकी खानकाह में अतराब से हजारों लोग आएंगे, उसमें उलमा तो समझ में आता है, लेकिन गैर उलमा है वो आप ही से दलील पकड़ेंगे, जब जब आप दुनिया से इंतकाल फरमा जाएंगे वो अपनी मस्जिद में बैठेंगे तो कहेंगे हजरत मौलाना जकरिया साहब हमारे शेख ने बेद लाया था मस्जिद में, इसलिए हम भी बेद लाएंगे। फरमा इसलिए मैंने मना किया है, कहीं ये ना हो कि वो आपको दलील बनाए। ये है अंडरस्टैंडिंग, ये है समझ। तो दयानंद सरस्वती की बात अजीब, कहा बताओ ना कुरान लगता है मोहम्मद का कुरान है, नाउज बिल्ला, ये अल्लाह का नहीं। अगर नेमत ये तो नेमत तो अच्छी चीज को, जहन्नम को कौन नेमत कहता है? आग में जलना कोई नेमत है? तो हजरत ने फरमाया भाई इधर आओ दयानंद सरस्वती, अगर तुम यहां से गाड़ी लेके जा रहे हो, रास्ते में पुलिस आपको खड़ी करे और यूं कहे आगे जरा बहुत बड़ा खड्डा है, ट्रेंच है, जरा संभाल के जाना वरना आप गाड़ी के साथ या आप गिर जाओगे, मर जाओगे, तो ये उसका एहसान है या नहीं, उसका शुक्र है या नहीं? फरमाया उसकी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है कि उसने आगे खड्डे में गिरने से मुझे बचाया है। फरमाया अल्लाह ताला सारी नेमतों को बयान करने के बाद अब ये भी नेमत बता रहे हैं, याद रखो आगे जहन्नम है, अगर तुम नहीं सुनोगे मेरी बात तो फिर जहन्नम के खड्डे में गिरोगे, अल्लाह तुम्हें जहन्नम के खड्डे में गिरने से बचा रहा है, ये भी अल्लाह की नेमत है। ये भी अल्लाह की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। इससे बड़ी क्या नेमत कि अल्लाह इंसान को जहन्नम से बचा। इसीलिए इसीलिए अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी फरमाते हैं, अगरचे सारी दुनिया के लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनको अजाब अल्लाह नहीं देता, यह भी नेमत है। और मुसलमानों तुम्हारे ईमान को अल्लाह बचा रहा है। कुरान में कहा है ना, अगर ए मुसलमानों तुम अगर गैर मुस्लिम के माल को देखकर लार न तपकाते तो मैं इन लोगों के मकान को, इनके बेद को, इनकी कुर्सियों को, इनके चरने की सीढ़ियों को सोने की बना देता। मैं कुरान में अल्लाह कह रहा है, मैं सोने की बना देता, लेकिन मुसलमानों मुझे तुम्हारे ईमान की फिक्र है। कहीं तुम उनको देखकर यूं न कहने लगो हम ईमान वाले हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, और उनके माल को देखकर तुम ईमान को छोड़ बैठो। मेरे नजदीक दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह फरमाते हैं मेरे नजदीक दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है, अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो मैं इन लोगों को मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया न देता, अल्लाह कह रहे। इंदल्लाह जनाह बऊदा, मैं इनको एक घोट पानी न देता, लेकिन तुम्हारे ईमान की फिक्र है। इसीलिए इमाम गजाली फरमाते हैं बाज मरतबा अल्लाह ताला मालदारों के माल को ले लेता है, कोई आफत आ गई, कोई मसला आ गया, जैसे अभी मैं एक जगह जाना हुआ, तो मुसलमान है वो क्या हुआ, कोई नाफरमानी में जिंदगी गुजर रही है, लेकिन अचानक रात में आ गई गवर्नमेंट के लोग और का पूरी बिल्डिंग को खाली करो, सारे तलबा को निकालो, कुछ आग का खतरा है वगैरह, सारा ही सब खत्म हो, हजारों तालिबे इल्म चले गए, ये बेचारा महरूम हो गया किराए से। क्यों ले लेता है अल्लाह? फरमाया ज्यादा माल की वजह से तू तकब्बुर में, और कभी अल्लाह की नाफरमानी में, यहां तक कि तू ईमान को खो बैठेगा तो तेरे ईमान के बचाने के लिए मैं तुझसे माल भी ले लेता हूं। और कभी गरीब को माल देता है, क्यों? हदीस में है कादल फक्रु अन यकून कुफरा, कभी फकीरी की वजह से इंसान अपने ईमान को खो बैठता है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, इन लोगों के पास कितना है, कहां है अल्लाह। जैसे मैंने पहले भी सुनाया था, एक आदमी मेरे पास यहां इस मस्जिद में आया, कहा हम सब नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ है, इतनी दुआएं करते हैं, इस दे अल्लाह, अल्लाह है क्यों नहीं सुनता, लगता अल्लाह नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसे कलमे ना पकड़ो, इससे कुफ्र आदमी काफिर बन जाता है। तो कभी अल्लाह तबारक व ताला इस तरह से नेमत को देकर ईमान को बचाता है, कभी नेमत को लेकर। इसीलिए सालबा का वाकया मशहूर है हदीस में, सही हदीस है। तो सालबा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आने के बाद कहा भाई अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे खूब माल दे दे। फरमाया नहीं, ऐसी दुआ न करो वरना तुम फितने में पड़ोगे, फितने में नहीं अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, मेरे पास होगा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अल्लाह के नबी से ऐसे हाथ उठाए, दुआ कर दी, और अल्लाह के रसूल जब दुआ कर दे, माल बकरियां, यहां इतनी बकरियां हो गई, इतनी ज्यादा कि उनके लिए मदीना मुनव्वरा में रहना मुश्किल हो गया, नमाज छूटने लगी, दीन से दूर होने लगे, मदीना मुनव्वरा छोड़कर फिर चले गए जंगल में, और इतना माल, इतनी बकरियां हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सालबा किधर है? फरमाया तो बहुत बकरियां हो गई आपकी दुआ से, तो वो तो चले गए मदीना मुनव्वरा से, जंगल में रहते हैं, सारी बकरियां बहुत इतनी ज्यादा है। कहा साहबा से साल पूरा हो गया, जाओ उनसे जकात ले आओ, कलेक्शन करो, जकात ले आओ। चूंकि उस जमाने में साहबा किराम अल्लाह के रास्ते में मशगूल होते थे, तो सबका जकात के लिए जाना आना मुश्किल था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कलेक्टर कलेक्शन के लिए उसको रखते थे, जाओ सबसे जकात लो, या सबको जिसको जिसको देना उसको दे दो। वो गए, मना कर दिया, ये तो टैक्स है, मना कर दिया, ये तो टैक्स है, ये कहां जकात, ये अल्लाह की तरफ से थोड़ा है, ये तो तुम हमसे टैक्स ले रहे हो, मना कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल लिसालबा, हलाकत हो सालबा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेवर एवर ही मेड दुआ फॉर हिमसेल्फ और अगेंस्ट हिमसेल्फ इफ समबडी हर्ट हिम, इफ समवन हर्ट हिम ही नेवर मेड बट दुआ फॉर दैट पर्सन। लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है तो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद दुआ की है। आपको मालूम है Taif ka waqia, no time to go in more detail. In the place of Taif, how much they hurt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadith bari padi hai ki aapke wo jo khadim jo aapke saath tha, aapka khadim, wo aapka gulam, usne joota bhi is pair se khincha, wo khoon ki wajah se wo glue ki tarah chipak gaya tha. Itna khoon nikla tha Allah ke Habib sallallahu alaihi wasallam. Lekin baddua nahi ki, balki yun ka Allah, ye meri कमजोरी की वजह से है. ए अल्लाह, मैं जैसा काम करना चाहे नहीं कर सका. ए अल्लाह, तुमने मुझे किसके हवाले कर दिया? काश के ये लोग मुझे समझते. फौरन जिब्राइल आ गए, फौरन वो माउंटेंस फरिश्ते आ गए. फरमाया, ये फरिश्ते मौजूद हैं, ये चाहते हैं अल्लाह के हुक्म से कि ताइब के दोनों पहाड़ को मिलाकर पूरी ताइब की कौम को कुचल दें. फरमाया, नहीं 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 नहीं, अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो इनके जनरेशन, इनकी औलाद ईमान लाएगी. और देखो, मोहम्मद इब्न कासिम हिंदुस्तान आया ताइफ से, और उनके हाथ पर सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए, और कितने मुसलमान हुए उनके हाथ पर. ये ताइफ से तो आए थे हजारों लाखों मुसलमान. ये सदका है मोहम्मद इब्न कासिम का, जो ताइफ से ये दुआ थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. ताइब बड़ा पड़ा है पूरा इस्लाम से, आप जाकर देखो. अल्लाह, आज भी मैं उस माउंटेन पर गया, ये माउंटेन उस माउंटेन के दरमियान में कौम रहती है. दो माउंटेन आज भी मौजूद है. उस माउंटेन के बारे में कहा जिब्राइल ने, अल्लाह ने इन दोनों फरिश्तों को भेजा है कि सबको कुचल दे. फरमाया, नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो. आज नहीं तो कल जिंदगी में इनकी कौम ईमान, इनकी औलाद ईमान ले आएगी. बर्दाश्त किया, लेकिन मताब में आप सजदे में थे नमाज में, और कौम ने ओजरी डाली, ऊंट की ओजरी आपके पीठ पर रखी, चूंकि नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में खलल किया, अल्लाह के हुक्म तोड़ने में उन्होंने खलल किया, मजबूर किया. तो उस वक्त बद्दुआ की, अल्लाह इन तमाम को हलाक फरमा, इन तमाम को. सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मेरी आंखों ने देखा, मेरी आंखों ने देखा कि बदर के मैदान में जिस जिस जगह में अल्लाह के नबी ने कहा था, 5 साल के बाद हरेक को खत्म कर दिया गया. दुआ कबूल, बद्दुआ कबूल हुई कितने साल के बाद भाई? हम तो क्या करते हैं, अल्लाह अभी कबूल कर दे. अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, बद्दुआ कर रहे हैं, और कब? 5 साल के बाद कबूल हुई. ये दुआ तो मक्का में की थी जब आप हिजरत से पहले, और कबूल हुई बदर में. अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रस्तिजालहुम बिलखैरि लकुदिया इलैहिम. अल्लाह अकबर, फरमाया लोग कभी बद्दुआ इतनी करते हैं, इतनी बद्दुआ करते हैं जैसे वो यूं चाहते हैं कि हमारी दुआ भी कबूल हो जाए, और इतनी जल्दी हमारी बद्दुआ भी कबूल हो जाए. कभी अपनी जात के लिए बद्दुआ करते हैं ना, कभी अपनी औलाद को कर्ज करते हैं, कभी अपने भाई बहनों को कर्ज करते, उनके लिए बद्दुआ करते हैं. अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तदउ अनफुसकुम, दोन में एक बद्दुआ फैसल, वला इला औलादिकुम, दोन में एक दुआ फॉर योर चिल्ड्रन. मेरी बात सुन रहे हो? सो गए आप लोग? गुस्से में आते हैं तो बेटे को क्या क्या कह देते हैं, गुस्से में आते हैं तो बेटी को बद्दुआ देते हैं, फिर जब होता है तो फिर पछताते हैं. क्यों? अल्लाह फरमाते हैं, वला अमवालिकुम, तेरी दुकान पर भी कर्ज न कर, तेरी फैक्ट्री पर भी कर्ज न कर, तेरे माल पर भी कर्ज न कर. ला युवाफिक उसातन, हो सकता है वो कोई टाइम ऐसा हो, पतुस तजाब, तेरी बद्दुआ कबूल हो जाए, बाद में तू पछताता रह जाए. Might sometime the time is dua to accept. My Allah Ta'ala accept your baddua and then it fall upon you or upon your children or upon your wealth. What you going to do then? It's too late. Insan to aisa hai na? Allah keh raha hai, agar main kabool kar lu tumhari nek dua ki tarah, to phir usi waqt lakudiya ilayhim, usi waqt tumhara khatima kar dunga. Lekin main Allah hoon. मैं अल्लाह, मैं जानता हूं तूने गुस्से में बड़ी बद्दुआ कर ली, मैं फौरन कबूल नहीं करता, छोड़ दिया, वरना तू हलाक हो जाता, तेरी औलाद हलाक हो जाती, तेरा माल तबाह हो जाता. अल्लाह कुरान में आगे इसी आयत में कह रहे हैं वइदा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दाना लिजंबी औ काइदन औ काइमा, जब मेरे बंदों पर मुसीबत आती है, व्हेन एवर डिफिकल्टी कम अपॉन माय सर्वेंट्स, तो क्या कर रहा है, वइदा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दाना लिजंबी औ काइदन औ काइमा, कभी सोते सोते दुआ करता है अल्लाह मुसीबत को दूर कर दे, कभी बैठे बैठे अल्लाह से दुआ करता है, और कभी खड़े खड़े अल्लाह से दुआ करता है। ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ, जब उनसे मैं मुसीबत को हटा लेता हूं तो ऐसा समझता है जैसे कभी अल्लाह से मांगा ही नहीं उसने, यानी मुझे छोड़कर भाग जाता है। He runs away. He don't come back to my house, my masjid. He don't come to my house. He don't come to worship me and don't come in front of me. अल्लाह शिकायत करता है कुरान। He complains in the Quran. खैर मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जात के लिए कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की अपनी जात पर। देखो इंतकाल से पहले आप बहुत बीमार थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो मुझे दवा नहीं पिलाना, लडूट जिसको कहते हैं, मुझे पिलाने कुछ कतरे होते तपकाने होते हैं, तो बाद साहबे किराम फरमाते नहीं, वैसे बीमार जो है दवा पीने से कतराते हैं ना, तो अल्लाह के नबी ने वैसे ही कहा होगा, क्या कहा, वैसे ही कहा होगा कि दवा न पिलाना, चूंकि बीमार आदमी बीमारी में दवा बहुत पीने से कटवाता है, इसलिए अल्लाह ने पिलाया गया आपको बीमारी में। अल्लाह के नबी को दवा पिलाई गई बुखारी शरीफ में, पिलाई बात साहबे किराम ने, जब होश में आए तो कहा किसने मुझे दवा पिलाई, साहबे किराम सारे खड़े, फरमाया एक साहबी से इन तमाम को वही दवा पिलाओ सिवाय अब्बास के, अब्बास नहीं पिलाए, इन तमाम को पिलाओ, क्यों दोबारा उनको पिलाई गई, ये तो बदला लिया है। इस पर हजरत नानोतवी का जवाब सुनिए, फरमाया कभी अल्लाह वाला बदला ना ले, कभी अल्लाह वाला बदला ना ले, लेकिन उनका ताल्लुक अल्लाह से इतना ज्यादा होता है कि अल्लाह वाला फौरन बदला ना ले तो अल्लाह उसकी तरफ से बदला लेता है, और अल्लाह का बदला बंदे के बदले से बड़ा खतरनाक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त नहीं किया, ऐसे बेशुमार वहशी का वाकया देख लो, कुरान करीम हदीस में मौजूद है। तो मैं सुना रहा था आपको सालबा की बात, वमिनहुम मन आहद, अल्लाह ने आयत उतार दी, वमिनहुम मन आहद, उसने क्या कहा, टैक्स है, ये तो टैक्स है, अल्लाह ने कहा वमिनहुम मन आहद अल्लाह लैन आताना मिन फदलिही लनकूनन मिन सालिहीन, ए मेरे अल्लाह तू मुझे माल दे दे, नबी की दुआ कबूल हो गई, माल मिल गया, नबी के सामने वादा किया, वमिनहुम मन आहद अल्लाह, अल्लाह से नबी से वादा करना, किससे वादा करना है, अल्लाह से वादा करना है, लैन आताना मिन फजली, अगर तेरे फजल से, इफ यू गिव अस वेल्थ विथ योर फजल, तो हम क्या करेंगे, हम अल्लाह के रास्ते में लनसदकन्ना सदका करेंगे, लनकूनन मिनस सालिहीन, और हम नेक बन जाएंगे। वलिनाताना, जब हमने उनको दिया तो क्या किया, बखिलू भी, वो बखील हो गए, टैक्स कहने लगे। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं पहले मैं तो कह रहा था मैं तो ये करूंगा अल्लाह के रास्ते में, जब मैंने माल दिया तो बखील बन गया, फआकबहुम निफाकन फी कुलूबिहिम, हमने उनको मुनाफिक बना दिया, मुनाफिक बन गए, कहां अल्लाह के नबी की दुआ क्या। अब ये अल्लाह के नबी का तो इंतकाल हो गया, अब उसके बाद ये आए किसके पास, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास माल लेकर, फरमाया जब नबी ने कबूल नहीं किया तेरा माल तो मैं भी नहीं कबूल करता हूं। सिद्दीक अकबर का इंतकाल हो गया, वो माल लेकर आया हजरत उमर फारूक के पास, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट एक्सेप्ट योर वेल्थ एंड अल्लाह अबू बकर सिद्दीक डिड नॉट एक्सेप्ट योर वेल्थ, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल्सो, और उसके बाद हजरत उस्मान के जमाने में मुनाफिकत की हालत में उनके इंतकाल हो गया। देखा अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, क्यों, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने पर यह होता है, अल्लाह के हुक्म तोड़े। तो मैं कह रहा था आपसे शुरू से बात बहुत में बहुत शायद मैं समझता हूं बहुत अंदर चला गया मैं, अब मैं कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम,
अभी तो मैं सोच रहा था कि सूरह फातिहा के कुछ फजाइल भी सुनाऊं ताकि हम रोजाना नमाज पढ़ते समझे तो सही क्या कह रहे हैं। एक मरतबा इब्न अब्बास एक 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 फजीलत सुन लो। इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहि सलाम के साथ बैठे हुए बात कर रहे, अचानक दरवाजा कैसे खोलता है तो आवाज आती है चींची की, आवाज आई ऊपर से। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील ये क्या है, फरमाया आसमान का दरवाजा आज खुला है और उस दरवाजे से एक फरिश्ता वन एंजल इज कमिंग टुडे इन दिस दुनिया ही नेवर कम बिफोर इन दिस दुनिया, वो आ रहा है आपसे मुलाकात करने के लिए। वो फरिश्ता आया अल्लाह के नबी के सामने बैठा, फरमाया मैं अल्लाह के पास से दो नूर लेकर आया हूं। क्या लेकर आए भाई, सुभान अल्लाह तो कहो, मेरे नबी की बात पर दो नूर लेकर आया हूं। कौन सा दो नूर है, फरमाया सूरतुल फातिहा और सूरे बकरा की आखिरी दो आयत। फरमाया आपसे पहले पिछले किसी उम्मत को ये नहीं दिया गया, ए नबी तुम बड़े ही रहमत वाले, अल्लाह ने ये नूर आपके लिए और ये नूर आपकी उम्मत को अता किया है। अल्लाह हमें कसरत से नमाज में जब पढ़े सूरह फातिहा समझने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बंदे ने मेरी तारीफ की, अर रहमान रहीम बंदे ने मेरी सना बयान की, मालिक यौमिद्दीन उसने अपने काम मुझे सुपुर्द कर दिया, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, आधा मेरा आधा तेरा, अब तूने जो मांगा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब तूने मांगा है मैं तुझे सिरात मुस्तकीम पर चला दूंगा और तुम्हें बचा लूंगा मिसलेद होने से गुमराह होने से। यह है सूरतुल फातिहा, अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।